26। महाराज, पितामह की आज्ञा है कि सभा के लिए आप सभागृह में उपस्थित हों। महामंत्री विदुर का सेवक भोज पत्र पर लिखा आज्ञा पत्र मेरे सामने करता हुआ सिर झुकाए खड़ा था। द्वैतवंश राजधानी में लौटे हमें एक भी दिन नहीं हुआ था कि पितामह द्वारा स्वयं बुलाई गई यह पहली ही सभा आमंत्रण का एक विचित्र रूप धारण कर मेरे सामने उपस्थित हुई थी। वह आमंत्रण नहीं था, आज्ञा पत्र था। सभा महाराज ने नहीं बल्कि पितामह ने बुलाई थी और उस भोज पत्र पर सभा का प्रयोजन भी लिखा नहीं था। क्षण भर क्रोध की उमड़ती हुई भावनाएं मन में उधम मचाती रहीं। उस भोज पत्र को फाड़ डालने के लिए के विचार से मैंने उसको आड़ा पकड़ा, परंतु तभी उस पर चिपटा हुआ अतलसी वस्त्र पर बुना हुआ स्वर्ण धागों का छोटे आकार का सूर्य बिंबांकित राजचिन्ह चमक उठा। वह कुरुओं की आदरणीय राजमुद्रा थी। उस राजमुद्रा की परंपरागत ख्याति ऐसी थी कि सभी के सिर उसके सामने झुक जाते थे। व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, परंतु राजमान्य प्रतीक के सम्मुख उसको झुकना ही पड़ता है। मैंने अपना विचार बदल दिया। जाओ तुम। वह भोजपत्र को एक तबक में रखकर लाया था। उसी तबक में एक लकड़ी के आसन पर मोम का गोला रखा हुआ था। उस गोले को उठाकर आज्ञा पत्र प्राप्त होने का संकेत के रूप में मैंने तर्जनी में पहने हुए अंगूठी का चिन्ह उस पर अंकित कर दिया। गोला पुनः तबक में रखकर अभिवादन कर तबक संभालता हुआ वह चला गया। पितामह द्वारा आमंत्रित पहली राजसभा, उसके लिए मुझको आज्ञा पत्र। क्या है पितामह के मन में? देह पर राजवस्त्र धारण करते हुए मेरे मन में अनेक मार्गों से ऐसे दौड़ रहा था जैसे पर्वत शिखर से ढरता हुआ पानी अनेक प्रवाहों में जिधर रास्ता मिलता है वहीं दौड़ता जाता है। सभा का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। सदैव की भांति सभागृह में जाने से पहले मैंने उस दिन भी राधा माता के चरण धूलि शीर्ष लगाई। दुर्योधन के साथ ही मैंने सभासदों से भरे हुए सभागृह में प्रवेश किया। सभी कुरु योद्धा उपस्थित थे, परंतु सभा किस लिए बुलाई गई थी यह किसी को विदित नहीं था। सभागृह पूर्ण होते या कार्यक्रम के नियमानुसार प्रस्तावना के रूप में आमात्य विश्वकर्मा बोलने लगे। आज की राजसभा पितामह ने बुलाई है। कुछ कुरु योद्धाओं को विभावी संकट की गंभीर चेतावनी देना चाहते हैं। उनका प्रत्येक शब्द सबके लिए शीर्षा वंदे है। वे जो कुछ कहें उसको सभी योद्धागण ध्यानपूर्वक सुने। इसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। पितामह के गगनभेदी पराक्रम का तथा हस्तिनापुर राज्य के लिए उन्होंने जो अद्वितीय त्याग किया है उसका वर्णन करने का यह समय नहीं है। फिर भी हमारे राज्य का प्रभाव उनके ध्वजदंड जैसे जीवन के कारण यार्यावर्त में वृद्धिगत हुआ है यह कोई नहीं भूले। इस सभागृह में वे सबसे ज्येष्ठ वृद्ध हैं। वृद्धों के अनुभवी वचन औषधि होते हैं। मन के विकृत विचारों की व्याधि को वे उखाड़ फेंकते हैं। द्वेष भी ऐसे ही एक व्याधि है। इस व्याधि रूपी मृगजल के पीछे पड़ने के कारण देवता आदि के वैभव संपन्न राज्य भी धूल में मिल गए थे। आपस में झगड़ना तो ऐसा ही है जैसे अपने ही दांतों के नीचे अपनी जीभ का दब जाना। जो सुज्ञ और दृष्टा होते हैं वे इस प्रकार दबी हुई जीभ को कुशलता से दांतों की पकड़ से निकाल लेते हैं। इसके लिए प्रेम और संयम आवश्यक है, क्योंकि द्वेष से कपट, कपट से क्रोध और क्रोध से युद्ध जन्म लिया करता है। युद्धों से प्रश्न कभी नहीं मिटते, बल्कि उनमें से नए नए जटिल प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रेम और संयम ही सच्चा धर्म है। आज हम सभी को आंखें खोल कर उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो कल द्वेष की मशाल लपलपाते हुए चारों ओर से सभी को दग्ध कर देगी। इसीलिए सभी शांतिपूर्वक पितामह की आज की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उदात्त सूचनाओं को ध्यान से सुने। शुष्क होंठों पर जीभ फेरते हुए वे बैठ गए। उनका एक एक शब्द तीक्ष्ण था। इतने मर्मभेदी वचन उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे। सभागृह में क्षण भर भयंकर शांति छाई रही। आमात्य के कथन से पितामह क्या कहेंगे इसका कुछ आभास सभी को हो गया। पितामह उठकर खड़े हुए। आज प्रारंभ से उन्होंने कुरुओं का राजदंड महाराज के हाथ में देने के बजाय अपने ही हाथ में ले रखा था। उनका शरीर बोलते समय सदैव की भांति थरथरा नहीं रहा था। वह हिमालय के उन्नत शिखर की तरह अचल खड़े थे। क्षण भर में ही उस शिखर के मुख से शब्दों की गंगा यमुना सभागृह के सभी योद्धाओं पर गिरने लगी। वीरों, अपने जीवन में यह पहली ही सभा मैंने आमंत्रित की है। हो सकता है कि यह अंतिम भी हो। मैं आपका सम्मुख कुरुओं के योद्धा के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूँ, न पितामह के रूप में, न परशुराम के शिष्य भीष्म के रूप में। इस राज्य का मैंने कभी उपयोग नहीं किया, उस राज्य के सेवक के रूप में भी नहीं, बल्कि आपके ही तरह एक आँख में विजय के आनंदाश्रु और दूसरी पराजय के दुखाश्रु लेकर जीवन संघर्ष को देखने वाले एक साधारण व्यक्ति के रूप में मैं खड़ा हूँ। अवस्था के अनुपात से यह संघर्ष मैंने आपकी अपेक्षा अधिक काल तक देखा है। मेरे जीवन के सभी निकटवर्ती साक्षी व्यक्ति कभी समाप्त न होने वाली अनंत यात्रा पर चले गए हैं। मैं पीछे घिसट रहा हूँ केवल इसलिए कि यह बात तुम्हें तुम्हारी भाषा में स्पष्ट रूप से बता दूं कि प्रकृति ने मानव मन की रचना कितनी विचित्रता से की है, वह दिन आ गया है। ध्यान रखिए, स्वार्थ मनुष्य को सर्वाधिक क्रूर बना देता है। भूख से व्याकुल सिंह अपनी भूख शांत करने के लिए किसी प्राणी को मारकर खाता है, परंतु वह कभी दूसरे सिंह को मारकर नहीं खाता। लेकिन स्वार्थ से व्याकुल मनुष्य एक दो नहीं बल्कि लाखों मनुष्यों को घाट उतारने में आगा पीछा नहीं देखता। मनुष्य को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सिंह को क्रूर कहे। विधाता क्या निर्मित द्वारा निर्मित इस जीव सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अधिक क्रूर प्राणी है। फिर भी विद्वान लोग मनुष्य को सुसंस्कृत मानते हैं, मानव श्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन कब? उस समय जब वह अपना स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद बहा दे। अन्यथा मनुष्य धर्म भाग्य राजनीति आदि का कितना ही ढूंढोरा क्यों न पीटे, उसका मूल्य दो कौड़ी का भी नहीं। मनुष्य को सबसे बड़ा यदि कोई शाप मिला हुआ है तो वह स्वार्थ का ही शाप है। भयंकर स्वार्थ से जकड़ा हुआ मनुष्य परिश्रम का परित्याग कर कपट का आश्रय लेता है। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें संसार के सभी व्यक्ति परिश्रम न करके केवल कपट बुद्धि के बल पर स्वार्थ को ही कुशलता का नाम देकर जी रहे हों। क्या दिखाई देगा? इस रमणीय पृथ्वी का मनुष्य के ही कारण बना हुआ नरक। ऐसे स्वार्थ का उचित समय पर निषेध करना चाहिए, इसीलिए मैंने यह सभा आमंत्रित की है। प्रजा का भविष्य उसके राजा पर अवलंबित होता है। तुम्हारे और मेरे सभी के दुर्भाग्य से ऐसे ही कपटमय स्वार्थ ने आज हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। कौन किसको दोष दे? सभी लोग तो मार्ग भ्रष्ट है। इसमें पहला और अक्षम्य दोष है आपके राजा का, इस धृतराष्ट्र का। अपने प्रिय भाई पांडु ने दिग्विजय कर इस राज्य को वैभव के शिखर पर पहुंचाया है। यह बात वह आज बिल्कुल ही भूल गया है। उसने कभी एक भी शब्द से अपने पुत्र को नहीं रोका। मैंने यह सुन रखा था कि सत्ता के लोभ से मनुष्य अंधे हो जाते हैं, परंतु इस बात को असत्य सिद्ध करने वाला सत्य तुम्हारे राजा के सामने उपस्थित है। दुर्भाग्य से वह अंधा राजा सत्ता के लोभ में आँख वाला बन गया है। अपने पुत्र को आगे कर उसके राज्याभिषेक के असंभव सपनों को दिन में भी साकार देखता है। धन्य है उसकी राजनिष्ठा। आमाते विश्ववर्मा ने कहा है कि वृद्धों के वचन औषधि जैसे होते हैं। मैं कहता हूं कि वह औषधि कितनी गुणकारी क्यों न हो, लेकिन जब तक व्याधिग्रस्त व्यक्ति सावधानी से पथ्य का पालन नहीं करता तब तक उसका कोई उपयोग नहीं। सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं पूछता हूं कि धृतराष्ट्र अब भी अपने अंतर्मन की आंखें खोलेगा या नहीं? उसका पुत्र दुर्योधन कम से कम अब राजकीय पथ्य का पालन करेगा या नहीं? क्या आप सब लोग शांत मन से कभी सत्यासत्य का विचार करेंगे? हम लोग जिस सभागृह में बैठे हुए हैं उस सभागृह ने अभिमान के कितने प्रसंग देखे हैं, यह बात क्या आज एक को भी याद है? महाराज हस्ती का यह हस्तिनापुर सैकड़ों वर्षों से मस्तक उन्नत किए हुए आर्यावर्त का नेतृत्व करता आया है। इस सिंहासन को तप्ति पुत्र कुरु, शुभांगी पुत्र विदुरथ, संप्रिया पुत्र अनशन, अमृता पुत्र परीक्षित, सुवेशा पुत्र भीमसेन, सुकुमारी पुत्र प्रतीप और मेरी महामाता सुनंदा के पुत्र महाराज शांतनु जैसे बलशाली और विशाल हृदय वीरों ने सुशोभित किया है। उनकी कीर्ति का डिंडिम दिग्विजय कर पांडु ने गुजा दिया है। और आज यह स्थिति है कि प्रत्येक घटना हमको सिर झुकाने को विवश कर रही है। ऐसी सभागृह में द्रौपदी की जो क्रूर विडम्बना हुई थी वह कौन सा पुरुषार्थ था? दूत के पासों से पांडवों के ही बसाए हुए संपन्न राज को हड़प कर उनको पेट के लिए देश देश की ठोकरें खाने देना किस राजधर्म के अंतर्गत आता है? इतना करने के बाद भी दुर्योधन शांत नहीं बैठा है। क्या इसके लिए भी इस धृतराष्ट्र ने कभी मुंह खोला है? नहीं, इसीलिए विवश होकर मुझको यह करना पड़ रहा है। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दुस, जय, सत्यव्रत, दुर्मर्षण, पुरुमित्र और विश्वंत शति महारथि धृतराष्ट्र पुत्रों, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि अतिरथियों, हम लोग कहीं रुकेंगे या नहीं? दुर्योधन, लोग द्वेष का महावृक्ष कहकर तुम्हारी निंदा करें, इससे तो अच्छा है कि सामर्थ्यशाली गदावीर के रूप में तुम कीर्ति अर्जित करो। पांडवों का विषय अपने मस्तिष्क से निकाल दो, क्योंकि कल ही तुम दैत्यवंश से जीवित बचकर आए हो, वह केवल अर्जुन के कारण, कर्ण के कारण नहीं। मन में जिस उद्देश्य को लेकर तुम द्वैतवन में गए थे, इसे चित्रसेन गंधर्व ने छिन्न भिन्न कर दिया। कर्ण युद्ध भूमि से भाग आया है, उसके पुरुषार्थ पर तुम्हें मिथ्या विश्वास रहा है। उस कर्ण ने अपने जीवन में आज तक ऐसा कौन सा नेत्र दीपक पराक्रम किया? अर्जुन अजय धनुर्धर है, किरात रूपधारी साक्षात शंकर को उसने पराजित किया है। खांडवन में इंद्रप्रस्थ का राज स्थापित करते समय क्रुद्ध होकर आक्रमण करने वाले वरुण को भी उसने जीत लिया था और उससे अक्षय बाणों के तरकश सहित गांडीव धनुष प्राप्त किया था। स्वयंवर में मत्स्यभेद अर्जुन ने ही किया था और कल तो अपने प्राण संकट में डालकर तुमको गंधर्व के हाथ से छुड़ाकर उसी ने प्राणदान दिया है। अर्जुन को जीतना सरल नहीं है। जिस पर तुम अभिमान कर रहे हो वह कर्ण अर्जुन के पासंग में भी नहीं बैठेगा, इसीलिए मैंने इस समय महारथी अतिरथियों की सूची में उसका उल्लेख नहीं किया। युवराज, सभी अच्छे बुरे विचारों की उत्पत्ति मन में हुआ करती है। सर संसार को एक बार सरलता से जीता जा सकता है, परंतु मन को जीतना अत्यंत कठिन है। इसीलिए यदि तुम सच्चे वीर हो तो अपने मन के अर्जुन को पहले जीतो। राजलोभ का विचार मन से निकाल दो। पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे की ओर सहायता का हाथ बढ़ाएंगे, तभी यह राज्य टिकेगा। अभी समय नहीं बीता है। सेनापति को भेजकर मन से पांडवों को समझा बुझाकर वापस बुला लो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस राजदंड को अपने हाथ में रखने की तीव्र लालसा से उत्तेजित होकर तुम एक के बाद एक पांडव विनाश की भयंकर क्रूर योजनाएं बना रहे हो। उसका परिणाम सभागृह के इन शत शत योद्धाओं के सिंह जैसे प्राणों को भुगतान के रूप में चुकाना पड़ेगा। देनु धाम धन धरती इन सब की अपेक्षा वीरों के प्राण हजार गुणे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि राज्य का यश बढ़ाने का कार्य वे ही किया करते हैं। दुर्योधन, तुम इन सब वीरों को मृत्यु के महानद की ओर ले जा रहे हो। भीम को विष देने की कल्पना दुर्योधन तुम्हारी ही थी। वाणावत में राक्षागृह में कुंती सहित पांडवों को दग्ध करने का कपट तुम्ही को सूझा था। राज्य मांगने वाले पांडवों को खांडव वन दान देने की लोक विलक्षण उदारता तुम्हारी ही थी। पासे की कौड़ियां फेंक कर उस पर उछलते हुए शकुनी मामा के हाथ पर ताली मारने के लिए सबसे पहले जो हाथ पड़ा था वह तुम्हारा ही था। इस स्त्री के चरणों के धूल मस्तक से लगानी चाहिए, ऐसी साध्वी द्रौपदी को अनावृत जंघा दिखाने वाले गदावीर तुम ही थे। जिस जीव से देव मंत्र उच्चरित करते हुए अनाथों को दान दिया जाता है, उसी जीव से सूर्य प्रकाश जितनी पवित्र राजमाता कुंती को कलंकित कहकर भरी सभा में ठठाकर हंसने वाले तुम ही थे। और कल इस पराक्रम शून्य सूदपूर्ण कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर इंद्रप्रस्थ की दासियों के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए जाने वाले तथा वहां से लताओं से हाथ बदवा कर लौटने वाले पुरुषार्थहीन जल क्रीड़ा करने वाले भी तुम ही थे। दुर्योधन, कर्ण या राजदंड ही यदि तुम लोगों को मदांध बनाकर कुरुओं के भावी वैभव रूप इन शत वीर योद्धाओं के प्राणों से क्रूर द्युत खेलने के लिए पुनः पुनः इतना प्रवृत्त कर सकता है, तो यह राजदंड इन सबके प्राणों की अपेक्षा कितना क्षुद्र है। यह बात तुम्हारे साथ ही इन सभी योद्धाओं को स्पष्ट दिखाने के लिए मैं शांतनु पुत्र भीष्म उसको इस प्रकार फेंक देता हूँ। हाथ ऊंचा कर उन्होंने सुवर्ण का राजदंड सभागृह के मध्य भाग में फेंक दिया। नीचे फर्श पर खड़खड़ लुढ़कता हुआ वह दुर्योधन के पैर के पास आकर रुक गया। दुर्योधन सहित सभी योद्धा एकदम उठकर ऐसे खड़े हो गए जैसे देह पर बिजली गिर पड़ी हो। खिन्न मन से अकेला ही मैं बैठा रहा। राजदंड फेंकने वाला वह वृद्ध योद्धा ऊंचे देवदार वृक्ष की तरह अब थर थर कांप रहा था। उसके मस्तक पर सिकुड़नों के बीच श्वेत बिंदु चमक रहे थे। अखाड़े का लक्ष्य भेद, कापिल्य नगर का मत्स्य भेद, इंद्रप्रस्थ का शिशुपाल वध और इसी सभागृह में द्रौपदी का वस्त्र हरण, इनमें से कोई भी घटना मुझको इतनी रोमांचक नहीं लगी थी जितनी आज की यह घटना लगी थी। मंद मंद स्पंदित होने वाले उस राजदंड की ओर देखते हुए कहीं से विचारों का एक कंपन मेरे मन में तैर गया। झट से आगे बढ़कर वह राजदंड हाथ में लेकर मैंने ऊंचा उठा लिया। मिश्रित भावों की विविध छटाएं सभासद योद्धाओं की आंखों से उफन उफन कर आ रही थी। अब क्या करूंगा मैं, यही प्रश्न में मौन भाषा में मुझसे पूछ रहे थे। बैठ जाइए, मैंने शब्द की गदा फेरी। जैसे समुद्र का ज्वार उतर जाता है वैसे सबके सब लोग नीचे बैठ गए। मेरे शरीर में रक्त के कण तेजी से भ्रमण करने लगे। आंखों के कोने यज्ञकुंड की तरह प्रज्वलित हो उठे थे। कोनों के रण क्षेत्र पर कोई शब्दों के शंख कुंड की नसे फुला फुला कर फूंक रहा था। कर्ण अर्जुन के पासंग में कभी नहीं बैठेगा। पराक्रम शून्य पराजित पलायन करने वाला कर्ण, ऐसा कौन सा नेत्र दीपक पराक्रम कर्ण ने किया है। अर्जुन अजेय धनुर्धर है। एक कान पर रखकर उठाए हुए हाथ को हिलाकर मैं यथाशक्ति तीव्र स्वर में बोला, मैं पराक्रम शून्य नहीं हूं, मैंने पलायन नहीं किया। कर्ण अर्जुन के पासंग में भी नहीं है यह कहने वाले पिता महजी को मैं दिखा दूंगा कि अर्जुन कर्ण के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। युद्ध में प्राप्त होने वाली विजयों की संख्या ही यदि पराक्रम की कसौटी हो तो अंगराज के रूप में नहीं, राजा दुर्योधन के मित्र के रूप में नहीं, आप कुरुजनों के सभागृह के एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सुतपुत्र राधे कर्ण के रूप में मैं यह राजदंड समस्त आर्यावर्त में अजय बनाकर घुमा दूंगा। जितने देश और जितने राजाओं को आमात्य विश्ववर्मा जानते हैं उन सभी को मैं इस पवित्र राजदंड के सम्मुख नतमस्तक कर दूंगा। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही मैं यह राजदंड लेकर नगर की सीमा से बाहर चला जाऊंगा, एक ऐसी दिग्विजय के लिए जो पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। यह जाति महाराज के इस हस्तिनापुर में यशस्वी होकर ही पुनः पैर रखूंगा, अन्यथा समरांगण में अपनी बलि दे दूंगा। परंतु कोई और कुछ कोई न समझे, इसलिए इस सभागृह में मैं फिर एक बार अच्छी तरह कह देता हूँ कि विजय से उन्मत्त होकर मैं श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारका इन दो राज्यों पर आक्रमण नहीं करूंगा। यह घोषणा मैं मरण या पराजय के भय से नहीं कर रहा, पर मैं यह क्यों कर रहा हूँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि यह घोषणा केवल श्री कृष्ण के लिए है। अब पुनः कोई कर्ण और अर्जुन की तुलना करने का प्रयत्न न करे। मैंने अखाड़े में द्वंद्व की जो चुनौती दी थी वह अब भी ज्यों की त्यों जीवित है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन टूटा हुआ नाद शून्य खड्ग है। उसी प्रकार पितामह ने राजा दुर्योधन पर जो आरोप लगाए हैं वे भी एकांगी है। बचपन में ही दुर्योधन के चार चार भाइयों को जल क्रीड़ा के बहाने प्राण निकलने तक पानी में डुबोकर रखने वाला भीम क्या पितामह को दिखाई नहीं दिया था? अखाड़े में मुझसे हाथ में प्रतोद लेकर कर ठठाकर हंसने वाले भीम के विकट हास्य को क्या वे भूल गए हैं? राजसूय यज्ञ के से युवराज दुर्योधन को पशुओं की गणना कर उन पर दृष्टि रखने का आदेश देते समय उनकी यह न्यायप्रियता कहाँ चली गई थी? अंधे पिता के पुत्र भी अंधे होते हैं कहने वाली पांचाली को वे जानते नहीं है क्या? और कल अर्जुन ने स्वमेव राजा दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त नहीं किया है, बल्कि उसने दुर्योधन की युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन मात्र किया है। अन्यथा दुर्योधन के हाथों पर लिपटी हुई लताओं को वह स्वयं खोल ही देता। मुझे ऐसा लगता है कि कौरवों और पांडवों का मिलना उतना ही असंभव है जितना दिन और रात का मिलना। पितामह कहते हैं कि यह राजदंड क्षुद्र है। मेरे विचार से यह राजदंड स्वर्ग के राज्य से भी अधिक श्रेष्ठ है। स्वयं उन्होंने इस राजदंड की निष्कलंक प्रतिष्ठा के लिए अपने गुरु जगदम्बनी परशुराम से घोर युद्ध किया था। इस बात को वे भूल सकते हैं, परंतु हम कम से कम मैं नहीं भूला, और गुरुजन के ज्येष्ठ के नाते से भविष्य में सबसे पहले उन्हीं को इस राजदंड के सम्मुख झुकना नहीं हो पड़ेगा, यह भी भला कौन कह सकता है? यूं तो आरण्य में घासों का घना जंगल बिछा रहता है, परंतु देव मूर्ति पर चढ़ाई जाती है दुर्वाही। ऐसे ही संसार में अनेक पर्वत हैं, किंतु हिमालय हिमालय ही है। उसी प्रकार स्त्रियां बहुत सी होती हैं, परंतु चरण धूलि माता के ली जाती है। इस हस्तिनापुर में वीर बहुत से हैं, परंतु इस राजदंड को फेंकने का साहस अकेले पितामह ही कर सकते हैं। आकाश में यूं तो अनेक तेज गोलक हैं, परंतु सूर्यदेव एक ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही यही एक राजदंड श्रेष्ठ है, और इसीलिए प्राणों की बाजी लगाकर आगे बढ़कर मैंने उसको उठाया है। यह कभी नीचे नहीं गिरने पाएगा। यदि ऐसा कोई अवसर आया भी तो खड्ग से खड्ग भिड़ जाएंगे, गदाओं से चिंगारियां छूटेंगी, बाणों से वर्षा होगी, चक्रों के आरे फिरेंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, परंतु यह राजदंड उन पर भी तैरता ही रहेगा, क्योंकि यह कुरुओं का है, हस्तिनापुर का है, परंपरा का है। केवल इसीलिए मैंने यह अपने हाथ में थामा है। जिस उत्कट कोटि की निराशा से पितामह ने इसको नीचे फेंका था, उसी उत्कट कोटि के निश्चय से उन्हीं के चरणों की शपथ लेकर मैं उसे आकाश के समान उन्नत कर दूंगा वर्षा ऋतु के बाद। मेरा संपूर्ण अंग थरथरा रहा था। मैंने क्या कहा, कैसे कहा, कितना कहा, इसका मुझे कुछ भी भान नहीं था। शरीर रूपी हाल तप्त होकर उज्जवल हो रही थी। अंगराज कर्ण की जय हो। सभागृह की छत योद्धाओं की घोषणाओं से प्रकंपित हो रही थी। मेरा हाथ मिश्रित भावनाओं के स्पंदनों से थरथरा रहा था। शांत होइए। राजदंड ऊपर उठाए हुए मेरे हाथ से किसी का हाथ सटा। वह दुर्योधन था। दूसरे हाथ से वह सबको शांत होने का संकेत कर रहा था। सबके सब शांत होते ही उसने थोड़े से शब्दों में महत्वपूर्ण बात कही। दिग्विजय के लिए सीमा से बाहर प्रस्थान करने वाले अपने परम मित्र कर्ण के पीछे मैं कुरुओं की चार अक्षौणी सहस्त्र सेना खड़ी कर दूंगा। इस सेना में 87,480 रथ तथा इतने ही हाथी, 206,440 उत्तम अश्वरोही और 437,400 पदाती योद्धा, कुल मिलाकर 874,800 की सैन्य शक्ति होगी। इस वर्षा ऋतु के बाद नदियों में पानी कम होगा, किंतु कुरुओं के कीर्ति समुद्र में ज्वार आएगा। बस पितामह द्वारा आमंत्रित इस प्रथम राजसभा को मैं भी पहली बार विसर्जित करता हूँ। सभी आमंत्रित महानुभाव वापस जा सकते हैं। उसने राजदंड मेरे हाथ से सादर अपने हाथ में ले लिया। अब वह उसी के हाथ में रहना था।